इसका इलाज कैसे, पहले इसकी ज़रा मज़ीद डिटेल्स देख लेते हैं। इंसानों के मामले में तकब्बुर के 6 बड़े सबब हैं, बल्कि 7। सबसे पहला सबब जो है वो इल्म है। अल्लाह अकबर। इल्म की बुनियाद पे जो तकब्बुर होता है ये बहुत बुरा तकब्बुर है। बस लोगों को ये हो जाता है कि हम बड़े इल्म वाले हैं, हम बड़े नेक हैं, लोगों को हमारी इज्जत करनी चाहिए, लोग हमारे साथ ये करें, हमारे आगे पीछे फिरें। किसी के घर में चले जाएंगे तो वो सोचेंगे कि बस शुक्र है कि हमने इनके घर में आकर एहसान किया। फिर ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अपने बारे में बहुत बातें सुनना चाहते हैं कि लोग उनको कहें, अरे आप हमारे घर आ गए, बस आपने तो इज़्ज़त बख्श दी, आपके कदमों की वजह से तो हमारे घर में बरकतें उतर आईं। इस तरह के जुमले सुनना, अगर किसी को ये अच्छे लगते हैं तो वो समझ जाए कि वो इल्म के तकब्बुर में आ चुका। फिर ऐसा शख्स उठते बैठते अपने इल्म का रोब डालता है, मैंने वहाँ से पढ़ा, मैंने ये डिग्री हासिल की, मैं ये किया। और याद रखिए कि ये सिर्फ दीन के ही इल्म से नहीं आता, दुनिया का इल्म तो और ही बुरा कर देता है, गर्दन अकड़ने लगती है। मैं 18 ग्रेड का ऑफिसर, मैं इतना बड़ा, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं पायलट, और उनकी तो जो अकड़ती है उनकी बेगमात की भी अकड़ने लगती है। मैं इतने बड़े अफसर की बेगम, मैं ऐसी बड़ी, यहाँ तो बेगमात रहती हैं, ये तो फुला हैं। इस तरह की कैफियत आती हैं। यानी अपना इल्म तो अपना इल्म था, दूसरों के इल्म को भी अपने लिए वजह बनाना। वो कहते हैं ना कि पीर साहब तो हैं ही हैं, पीर साहब की बेगम की भी बड़ी करामात है। इस किस्म की कैफियत आती है, ये बदतरीन किस्म का तकब्बुर होता है। देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले इल्म दिया, अगर वो इस तकब्बुर का शिकार हो जाते तो कभी भी अल्लाह ताला की फरमा बरदारी पर कायम ना रह सकते। तो इल्म का तकब्बुर जो है, इसका इलाज क्या है कि इंसान असल इल्म ले, असल इल्म की उसको फ़िक्र लग जाए कि क्या वाकई इस इल्म के साथ मेरे अंदर मामला आया है। आप कहेंगे कि अब क्या करें, इल्म ना हासिल करें, नहीं करें, लेकिन इल्म के साथ तकवा। सूरत फातिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह से तो इल्म वाले लोग ही डरा करते हैं, यानी तकवा। इन्नम यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, तो तकवा को पैदा करें। फिर इसी तरह इसके अंदर एक और चीज़ आती है जो फ़ख्र बन जाता है शागिर्दों के नाम पर, इसको कहते हैं तकब्बुर बित्तलामीज़। तलामीज़ तिलमीज़ की जमा स्टूडेंट्स का तकब्बुर। मेरे पास तो इतने लोग आते हैं, अरे आपके पास सिर्फ 4 लोग आते हैं, मेरे तो माशाल्लाह कमरा भर जाता है, माशाल्लाह हॉल भरा हुआ था। इस तरह की बातें करना। स्टूडेंट्स, अच्छा कितने लोग आते हैं भला वहाँ, अच्छा बताइए वो क्या हैं, अच्छा ज़रा बताइए कि उनकी लिस्टें मिल सकती हैं, अच्छा उनके नाम क्या हैं, अच्छा भला किस इलाके से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़्यामत की अलामतें हैं कि लोग अपने तालिब इल्मों या अपने स्टूडेंट्स की कसरत पर फ़ख्र करेंगे। क्या करना चाहिए, इसका इलाज क्या है? सबसे पहली बात है कि ख़ुद को एहसास दिलाए कि अल्लाह के इल्म के मुकाबले में मेरा इल्म कुछ भी नहीं। दूसरी बात है कि वो इल्म जिसके साथ अमल नहीं, वो मुझे कामयाब नहीं करवा सकेगा। इसलिए ऐसा शख्स अपने आप को अमल में बढ़ाने की कोशिश करे। और ऐसा शख्स जो है ना, फिर ये दूसरों को कॉपी करता है, अच्छा उलमा कैसे बात करते हैं, अच्छा वो कैसे आते हैं, अच्छा उनकी कोई बात है। देखिए एक इज़्ज़त वो है जो दूसरे खुद ही आपको दे दें, ये तो पसंदीदा है, ये तो अदब है, ये तो इंशाल्लाह आगे कहीं हम बात करेंगे अगर मौका मिला। लेकिन एक इज्जत है जो इज़्ज़त चाहना, देखो मेरे लिए कुर्सी क्या रखी थी, देखो मुझे नीचे बिठा दिया, देखो इतने देर से बिठाया हुआ, मेरा वक्त था, मुझे टाइम ही नहीं दे रहे। बहुत दफ़ा तो उलमा के झगड़े इस हद तक बढ़ जाते हैं कि आपने इश्तहार पे मेरा नाम नीचे और दूसरे का ऊपर क्यों लिखा। ये झगड़े हैं, मुझे बुलाया था 8 बजे और यहाँ आए हैं तो अभी जनाब पिछले मुकर्रर नहीं आ रहे, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं। ये इल्म का तकब्बुर होता है, नहीं कि आप सिर्फ सुनाने वाले, सुनने वाले बन के बैठ जाइए, और ज़रा कोई फ़ोन कर ले तो कहना आपने मुझे फ़ारिग समझा हुआ है, बेकार लोग समझा हुआ है, नहीं हम फ़ारिग नहीं। फिर ऐसे तकब्बुर वाले अपने इर्द गिर्द बहुत रुकावटें रखते हैं, लोगों को उन तक पहुंचने में कई रुकावटें दूर करनी होती हैं। ये सारी चीज़ें नहीं, अल्लाह के नबी से ज़्यादा कौन मसरूफ़ था और इल्म वाला था, लेकिन अब लोगों की रीच में थे, अप्रोचेबल थे। लोगों को ऐसे मैनेज कर दिया जाए कि वो खुद ही वक्त ज़ाया ना करें, लेकिन बहरहाल ख़ुद से ऐसी चीज़ों को नहीं समझना चाहिए। इसके बारे में इमाम गज़ाली हैं, कहते हैं कि ऐसे लोग चंद मुश्किल लफ्ज़ सीख लेते हैं जिनके ज़रिए से दूसरों पर रोब डालते हैं। अच्छा वैसे तो नहीं है, हर एक सोच के देखे। फिर बस लोग इसी झगड़े को लेकर स्टूडेंट्स पे झगड़ने लगते हैं, मेरे स्टूडेंट्स फलां के पास चले गए, फलां से। कभी ये मत कि मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, अगर अल्लाह आपको कहीं भी कुरान पढ़ाने लगे, बल्कि कहें कि इतने कुरान के तालिब हैं, क्योंकि ये अल्लाह की शान है ना। फिर होता कि एक इंसान अपनों और दूसरों के शागिर्दों को टैली करता है, ये बड़ी लंबी कहानी है जिसको इस वक्त हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन यहाँ ये जहन में रखिए कि ऐसा शख्स फिर करे क्या, इसका इलाज क्या है कि अपने से बड़े इल्म वालों के पास बैठे, अपने उस्तादों के सामने और आजिज़ हो जाए, उनकी जूतियाँ ठीक करे, उनकी खिदमत करे। علم کا زور ٹوٹتا ہی تب ہے جب بندہ دوسرے علم والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور وہاں جا کے خود کو ٹھیک کرے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے اس کا علاج ہو جائے گا. ورنہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آفت العلم الخیلاء، کہ اپنے آپ کو بڑا جاننا علم کی آفت ہے. پھر ایسے شخص کا ایک پہچان بھی ہوتی ہے کہ انداز میں تحکمانہ پن ہوتا ہے، حکم کا انداز ہوتا ہے، اور باتیں کیسے کرتے ہیں، تم تو گناہ گار ہو، تم تو ظالم، تم جہنمی، مجھے بڑا فکر ہے تم لوگوں کا کیا بنے گا، یعنی میری جنت پکی ہے، میں نے اپنی سیٹ ریزرو کی ہوئی ہے، بس فکر ہے تو تمہاری ہے. اس قسم کی ساری چیزیں جو ہیں ایسی ہیں. پھر ایسے لوگ اپنے نام پہ نعرے لگواتے ہیں، لوگوں کو کھڑا کروا دیں گے، باتیں کریں گے، آئیں تو ہمیں دیکھ کے لوگ کھڑے ہونے لگیں. پھر ایسا شخص جو علم کا تکبر رکھتا ہے نا، اس کی ایک اور پہچان ہے کہ دوسرے علم والوں سے حسد بہت کرتا ہے، خود کو کمپیئر بہت کرتا ہے، اس کے پاس اتنے آتے ہیں، میرے پاس اتنے تھوڑے آتے ہیں، اس کے پاس ایسے، اس کے پاس ایسے. اور اس طرح کی چیزوں سے پھر انسان اپنے آپ کو پوچھے اور پڑھے تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے کہ انسان عاجزی پیدا کرے. ایک دفعہ آتا ہے کہ حضرت حذیفہ تھے تو ان کو ایک بار امامت کرنا پڑی، تو جب دوبارہ ان کو دعوت دی تو کہنے لگے بھائی میں نہیں امامت کروا رہا، کسی اور کو بلا لو. کہا بھائی کیوں؟ کہا میرے ذہن میں یہ خیال آنے لگ گیا کہ میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں. یعنی بعض دفعہ اس طرح کی کیفیت بھی ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ جو ہمارا خرابی کرتے ہیں نا لوگ، وہ ہماری تعریفیں کر کے کرتے ہیں. چار لوگوں کی زبان سے اپنی تعریف سن کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا بن گئے. تو علم کا تکبر بڑا برا ہے. اس کے بعد جو دوسرا سبب ہوتا ہے تکبر کا، وہ ہے زہد اور عبادت. اپنی عبادت کو بڑا سمجھنا. راتوں کو عبادت کرتے ہیں، بس تہجد پڑھ کے تھک جاتی ہوں، ایسی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ نا، عبادت کا تکبر. اور یہ تکبر جو تھا نا ابلیس کا تھا، اس کو بھی تو یہی غم تھا نا کہ اللہ تو نے مجھے اتنا اچھا پیدا کیا اور میں نے تو اتنی عبادت کی ہے. ایسا شخص جو ہوتا ہے نا پھر اپنی عبادت کا ذکر بڑا کرتا ہے دوسروں کے سامنے، بس میں تو اتنا صدقہ کرتی ہوں، بس اب تو وقت ہی نہیں ملتا، گھر کا کام ہی نہیں کرتی، میں تو سارا دن پڑھتی ہوں، بس مصلی طے کیا تو قرآن کھول لیا، وہ اتارا تو پھر تسبیح پکڑ لی. اس طرح کا انداز آنے لگتا ہے. اور ایسا شخص پھر اپنے زہد اور اپنی عبادت کو بہت زیادہ لوگوں کی نظروں میں ہائی لائٹ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ اپنے لیے عزت چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ بس یہی کام کروں گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ تکبر بھی آگے کئی قسموں کا ہے جو میں اس وقت نہیں رکھوں گی. کبھی موقع ملے گا تو آپ کے ساتھ کلاس میں انشاءاللہ اس کو الگ سے بھی ڈسکس کر لوں گی کہ یہ واقعی سننے کے قابل چیزیں ہیں. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ تکبر ہی وہ خرابی ہے جس نے آج انسانیت کو کس کنارے پہ رکھا ہے. ایک طرف اللہ کی بات نہیں مانتے، ایک طرف نبی کی بات نہیں مانتے، اور انسانوں کی نظروں میں بڑے سے بڑا بنے بیٹھے ہوتے ہیں. پھر ایک تیسرا درجہ ہوتا ہے تکبر کا سبب، وہ کیا ہے؟ زبان سے تکبر کا اظہار کر کے فخر اور خود کی تعریف کرنا، یعنی صاحب کرامت ہونے کا دعویٰ کرنا. مثلا میری تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے، فلاں کی زبان تو کالی ہے، اس کی بد دعا نہ لینا، اچھا تم نے مجھے ستایا، دیکھنا اب تمہارا اللہ کیا حشر کرتا ہے. اس قسم کے جملے، یعنی زبان سے خود کو بڑا 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 کرتے کرتے، تمہیں پتہ ہے فلاں مجھے ستایا، تمہیں پتہ ہے آج تک اس کو پانی نہیں ملا، بس لوگ کہتے ہیں وہ بس ان کی بد دعا نہ لینا، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کو اگر کر دیا تو ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو خوش رکھو، ان کی بد دعا نہ لو. اس طرح کی باتیں کرنا. میرے لیے روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں، میں تو سارا سال روزہ رکھتا ہوں، اور مجھے کیا، اور میری بات اور یہ اور وہ. اس طرح کی باتیں کر کر کے اپنے آپ کو بڑا کرتے جانا. اس کا علاج کیا ہے کہ زبان کو سیلیں، کم بولیں. ہر دفعہ جب بولیں تو سوچیں جو بولا یہ لکھا گیا ہے، کل پکڑا جائے گا. میں قائم و داہر اور صائم و نہار ہوں، راتوں کو کھڑا رہتا ہوں، دن کو نماز پڑھتا ہوں، اور ہاں میری تو زندگی ایسی ہے. دیکھیں کبھی کبھی انسان تذکرہ کر سکتا ہے دوسروں کو رغبت دینے کے لیے، لیکن یہ پتہ چلتا ہے ایسے بندے سے لوگ نفرت کرتے ہیں، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے. جو بندہ خود کو بڑا سمجھے گا دوسرے اس کو ہمیشہ چھوٹا سمجھیں گے. پھر ایک تیسرا سبب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تفاخر بن نصب، نصب کی وجہ سے تکبر کرنا. مثلا ہم خاندانی لوگ، ہمارا خاندان یہ ہے، ہم ماشاء اللہ، ہم تو فلان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم تو سیدوں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو علوی خاندان سے ہیں، اور ہم تو مغلوں کی اولاد ہیں، اور ہم تو ایسے، اور تمہیں پتہ ہے میں کس کی نسل سے ہوں. اس قسم کے جملے بولنے، اس کی نشانیاں بہت ساری ہیں. مثلا اپنے خاندان سے پر شادی نہیں کرنی. کیوں بھائی، تمہارے خاندان کو کیا ہوا ہے؟ بس ہم جو ہیں وہی ہیں، ہم مغل ہوتے ہیں، اور ہم شیخ ہوتے ہیں، اور ہم رائی ہوتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں. مجھے نہیں پتہ ان میں سے کون کیا ہوتا ہے، لیکن لوگ اس طرح کے جملے بولتے ہیں. یہ نسب کا جو فخر ہے نا، یہ عجب کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، پبلک بسوں میں نہیں بیٹھیں گے، چھوٹی گاڑیوں میں نہیں بیٹھیں گے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت اس چیز کو رکھتے رہتے ہیں कि हम बहुत पीछे से बड़े लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे लोग जो हैं बाज़ दफ़ा फिर इस किस्म के तकब्बुर की अंदर आने लगते हैं कि जिसकी वजह से दूसरे ये सोच लेते हैं कि पता नहीं ये वाकई को बड़े आला किस्म के लोग हैं। नसब की बातें, ख़ानदान के, जहाँ बैठेंगे ख़ानदान की बातें, हम तो ख़ानदानी लोग हैं, हमारे अब्बा तो वो थे, ये सारी चीज़ें ख़ानदान की वजह से आती हैं। इस तकब्बुर का इलाज क्या है? इन अकरमकुम इंदल्लाह यत्काकुम। सूरह हुजरात में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि अल्लाह की नज़र में तो सबसे बड़ा वही है जो मुत्तकी है। तकवा को बढ़ाए इंसान, ख़ानदान को देखे, अपने ख़ानदान के अंदर जो खराबियाँ आई उनको देखे, ख़ानदान को किसी वक्त कोई तकलीफ़ हुई, कोई नुकसान हुआ उसको देखे, कभी उनके ख़ानदान पर अगर किसी ने कोई बात की तो उसको सामने रखते हुए अपना जायज़ा ले, इंशाल्लाह ख़ानदान का असर ख़त्म हो जाएगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि पाँचवा सबब जो होता है वो क्या होता है? तफाखुर बिशकल, शक्लो सूरत का फ़ख्र। मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, हुसन की परी हूँ, मैं तो इतनी प्यारी थी, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, खूबसूरती। और ये अमूमन औरतों के अंदर होता है, हर वक्त शीशा देखना, आईना ही देखते रहते हैं, इसकी पहचान देखें ना, क्योंकि हमें से कोई नहीं मानेगा कि हम अपनी शक्लो सूरत को डिस्कस करते हैं। लेकिन आप गौर करके देखें कि आज के दौर में मीडिया ने तो लुक्स को बहुत ही नुमायाँ कर दिया। लड़की देखने जा रहे हैं लुक्स कैसी हैं, अच्छी कैसी है, शौहर बीवी को पसंद करता है तो वो देख कैसे रही है। एडवर्टाइजमेंट ने झूठ फैला दिया, स्क्रीन पर चमकते हुए शक्लें लोगों को इतनी प्यारी लगी कि घर की सीधी सादी चीज़ें अच्छी ना लगी। अब इस शक्ल वाले का हाल क्या होता है कि वो कोई ऐसी नेकी कर नहीं सकता जिससे शक्ल ज़रा कमज़ोर हो जाए। मसलन जिस तरह आप देखिए कि हिजाब या निकाब है वो औरत के हुसन को ज़रा कम कर देता है या छुपा देता है ना निकाब, इसी तरह मर्दों की दाढ़ी जो है वो उसकी शक्ल की ज़रा खूबसूरती कम हो जाती है। बंदा उम्र से बड़ा लगता है, बस लोग सिर्फ इसलिए सर पर दुपट्टा नहीं लगते कि मैं उम्र से बड़ी लगती हूँ, बस कहते हैं मासी लगती हो, बस कुछ कहते हो। आज भी देखे ज़रा कोई सर पे दुपट्टा ले लो खींचते हैं, ये क्या मासी बनी हुई हो, ये क्या बड़ी अम्मा बनी हुई हो। ऐसी औरतें घंटों शीशा देखेंगी, एक एक झुरी एक एक बाल उन्होंने गिना होता है अपने माथे का, जिस्म का, एक एक तिल के लिए वो अपॉइंटमेंट लेके बैठे होते हैं डर्माटोलॉजिस्ट से कि ये मेरे स्किन पर एक दाना क्यों निकल आया और दाग क्यों निकल आया। क्या सिर्फ शक्ल, क्या अल्लाह ने इसलिए बनाया? आप देखिए कि पहले दौर में ये आम नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है, ये बात मैंने अपनी नानी से भी सुनी हुई है और आपने भी यकीनन इसकी आप तस्दीक करेंगे कि पहले दौर में माएँ जो थी बच्चियों को ज़्यादा आईना नहीं देखने देती थी। आईने जो होते थे वो दीवारों पे ज़रा ऊंचे लटकाए होते थे कि बच्चियां ना देख सकें। क्यों? कि फ़िक्र होती, ज़रा किसी बेटी या बेटे को माएँ अगर आईने के आगे देखती थी तो डांटती थी कि क्या हर वक्त ये लगी हुई हो। आज माएँ भी कॉन्शियस हो गई, बच्चियाँ भी कॉन्शियस हो गई। पैदा होते ही लड़की को सबसे पहला कमेंट क्या मिलता है? शक्ल बड़ी प्यारी है, देखना इसको कितना अच्छा दूल्हा मिलेगा। और ज़रा दबी हुई शक्ल वाली बच्ची पैदा हो जाए तो पहले दिन गम तो ये था, बच्ची हुई साथ ये गम आ गया, हाय इसका रिश्ता कहाँ होगा। और शुरू से फिर माएँ छोटे छोटे बच्चों को होते हैं, यकीन करें 2-4-6 महीने की बच्ची माँ की गोद में थी, मुझे कहने लगी मैं इसके वैक्स कर दूँ क्योंकि इसके मुंह पे रुआ बहुत है, तो मैंने सुना है कि बचपन में कर दें तो नहीं होता। हैरान होगी मैं उसकी बात सुन के, बाज़ माओं बच्चियों के मुँह पर वो आटा और पता नहीं क्या कुछ मल रही होती हैं, कोई उपटन मल रही होती हैं कि ये ठीक हो जाए। ये क्या बात है, इसका इलाज क्या है? इसमें मुब्तला तो बहुत सारे दिखेंगे लेकिन इसका इलाज क्या है कि वो हदीस सामने रखी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ना मैं तुम्हारी शक्लों को देखता हूँ ना तुम्हारे मालों को देखता हूँ, मैं तो तुम्हारे आमाल और तुम्हारे दिलों को देखता हूँ। फिर दूसरी बात, आईने का इस्तेमाल कम कर दें, कम करें इन बातों को, शक्ल को कम से कम डिस्कस करें। घरों में जानबूझ के ये जुमले छोड़ें बोलने कि दुल्हन कैसी लग रही थी, फलां कितना प्यारा था। कोई भी ख़ानदान के लोग हैं या फैमिली के लोग हैं, यानी शक्लो सूरत को बिल्कुल पीछे कर दें। फिर इसी तरह आप देखें कि अगर आपको अपनी शक्ल में कोई ऐप दिखता है तो आप किसी और चीज़ में बढ़ जाएं। क्या हुआ? शक्लें तो अल्लाह की बात बनाई हुई है, इसको देखें कि ये अल्लाह का शाहकार है, मुझे अल्लाह ताला ने ये शक्ल दी है, मैं अल्लाह को बुरा कहूँगी? सुम्मा सब वरकुम का लफ्ज़ आता है, अल्लाह ने पैदा किया, फिर सूरह इन्फितार में आता है, तो ये देखें कि मुझे अल्लाह ने पैदा किया। बस को अपना कद छोटा लगता है, जिसम मोटा लगता है, नाक मोटी, क्या करना है, कबूल कर लीजिए। बाज़ लोग इतने खूबसूरत होते हैं एक आँख नहीं भाते, यकीन करें, और बाज़ आम शक्ल के होते हैं दिल में आते हैं। असल मोहब्बत तो अल्लाह दिलों में डालता है। कई हुसन की परियां रोती देखी, मर्दों को कोई रगबत ही नहीं और कोई ना शक्ल की ना अकल की, और मर्द उनके गुन गाते हैं। तो बेटियों को ख़ास तौर पर इस ख्याल से निकालें और बेटों को तो बिल्कुल निकाल दें कि परी लेके आऊँगी तेरे लिए, वो परी कहाँ से लाऊँ जिससे तेरी दुल्हन बनाऊँ, तो परी आएगी तो वो परी फिर अपने अनाज भी तो दिखाएगी ना। ऐसे लोग कम से कम शक्ल पे आए, फिर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इससे फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद ये है कि ऑफ कोर्स इसमें मीडिया का बायकॉट करें, मत देखिए वो नाचती फुदकती तस्वीरें और मत दिखाइए अपने बच्चों को जो उनको ऐसा तकब्बुर ला दें या ऐसा से कमतरी में ले आए। फिर आप देखिए दुल्हन की सजावट पे जो 10-20 हज़ार खर्च आता है सिर्फ 2 घंटे के मेकअप का, उसकी वजह क्या यही हुसन नहीं? देखिए पहले दौर में माएँ नहीं करती नहीं ना, बच्चियों को गहरे रंग नहीं पहनने देती थी, मेकअप नहीं करने देती थी। होता क्या था, शादी का इंतज़ार होता था कि शादी के बाद जेवर पहनेंगे। शादी की खुशी सिर्फ लोगों को इसलिए भी होती थी अच्छे कपड़े मिलेंगे। आज तो हर दिन शादी, माँ से ज़्यादा बेटी की वार्डरोब भरी हुई है। अब हुआ क्या कि जब शादी हुई लड़की सजती है तो अमूमन एक जुमला बोला जाता था कि बड़ा रूप आया, ऐसे ही बोलते थे ना, आज दुल्हन पे बड़ा नूर आया हुआ है। आज कहते हैं मेकअप अच्छा हो गया, मेकअप बुरा हो गया, अच्छा हो गया। जो आर्टिफिशियल मेकअप करवा के और वो मियाँ को दिल पे हाथ रखना पड़ता है, लेकिन सब्र करो इसलिए कि मूवी अच्छी बनेगी। हाँ आज दुल्हन को जो सजाते हैं हमारे वेस्ट में, करीब से देखे तो कमज़ोर दिल वाला तो चीख मार के भाग जाए। वो कहते हैं कि वो खूबसूरत दुल्हन की यही पहचान है कि मियाँ 2 दफ़ा बेहोश हो, एक दफ़ा जब उसको देखे जाके कमरे में और दूसरी दफ़ा जब सुबह दुल्हन मुँह धो ले, तो वो 2 दफ़ा बेहोश होगा। तो इससे ज़रा सा अपने आप को कम करें, पीछे करें। खूबसूरती अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने इतना प्यारा हमें बनाया। अपनी आंखों को देखा करें, अपने बालों को देखें, एक एक चीज़ को हाथ लगाया करें कि मैं अल्लाह का फ़ैसला हूँ। फिर उसके बाद एक छठा सबब क्या होता है, दौलत, तफ़ख़ुर बिलमाल, ये तो माशाल्लाह इसी को बतर कहते हैं, इस पर हम बात कल के बारे में करेंगे। माल दौलत पर फ़ख्र, ये लोग जहाँ बैठेंगे, हमारे इतने मुरब्बे, इतनी ज़मीनें, कंटेनर एक आ रहा है एक जा रहा है, हम इंपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, डॉलर्स तो बस हमारे घर में ऐसे ही है। ऐसे लोगों की बातें तो बड़ी बुरी होती हैं, हर वक्त दिखावा दिखावा। इस पर कल बात करूँगी, आज नहीं करती। अगर इसका इलाज करना चाहें तो अपने आप को ज़रा पीछे रखें। कुरान पाक में ऐसे कई वाक़ियात हैं जिस पर बात हो जाती है कि पहले दौलत थी फिर ख़त्म हो गई। किसी ख़ानदान के ऐसे शख्स को देख लीजिए जो ख़ानदान के अंदर मतलब पहले बहुत दौलतमंद थे, फिर आग लग गई फैक्ट्री को, तबाह हो गई, इकॉनमी चली गई, ठप हो गया सब बस बात। तो इस दौलत को इंशाल्लाह हम आगे जाके एक दो टॉपिक्स मज़ीद आएंगे उनमें देखेंगे। सातवां जो सबब होता है तकब्बुर का, वो कुव्वत है। तकब्बुर बिल कुव्वा, कुव्वत पे बड़ा मान होता है लोगों को कि मेरी कुव्वत बहुत है। मसलन ऐसे लोग जो होते हैं जैसे सुपर पावर्स, अपने आप को बड़ा समझना। हाँ मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, ये कौम आद का नारा था कि हम तो जो चाहें वो कर सकते हैं, हमारी तो इतनी ताकत, हम एक इशारे पर ये करते हैं। हमारे अब्बा के एक इशारे पे सारी गाड़ियाँ रुक जाती थी, क्यों? क्योंकि वो पुलिस में काम करते थे और ट्रैफिक कंट्रोल करते थे। इस किस्म की कहानियाँ, यदि लोग फिर कुव्वत की बातें करती हैं और इस तरह से अपने आप को ले जाते हैं, तो बात तो इसमें और बहुत सारी हो सकती है, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। इलाज कर लीजिए, अपने आप को पहचानें, रब को पहचानें, इंसानों के अंदर अपने आप को रखें। एक होता है इल्म और एक होता है अमल, ये दोनों जमा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि तकब्बुर जो है ये ख़त्म होगा। और अपने आप को भूखा रखें, अपने आप को प्यासा रखें, कभी कभी अपने आप को गंदा रखें, अपने आप को पहचानें और फील करें कि मैं कुछ नहीं हूँ। फिर इबादत में अपने आप को लगाएं, जितना ज़्यादा आप इबादत के अंदर आते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला उतनी ही चीज़ें आपके अंदर अल्लाह ताला की रहमत से आसान होती जाएंगी। तो आइए अब ये सारी किस्मों को, ख़ासतौर पर ये 7 सबब ढूँढेंगे जो हमने अभी देखे। आपने इन आयतों को ढूँढना है। दिल चाह रहा है कि एक दफ़ा यहाँ बाकी सूरत अल फातिहा की तिलावत सुने और उसके दौरान अपना जायज़ा लेते हुए देखें कि क्या मुझे कोई हक़ पहुंचता है कि मैं तकब्बुर करूं। वक्त होता तो मैं आपको सूरत अर्रहमान तर्जमे के साथ सुनवाने की फरमाइश करती, ताकि अल्लाह की इस बनाई हुई कायनात को देखो और फिर अपने आप को देखो कि मैं कहाँ हूं। कोई एडमिन अगर रेडी है तो प्लीज़ हमें तिलावत सुना दें, नहीं तो इंशाल्लाह। ओके, जज़ाकअल्लाह खैर। अब इसको सुनते वक्त सब अपने अंदर झांकेंगे कि मैं क्या करती हूँ। तारीफ अल्लाह की कहती हूँ और करती अपनी रहती हूँ सारा दिन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
भूल जाता है ना जब अल्लाह की तारीफ होती है।